आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक का पाठ 3, साना साना हाथ जोड़ी। इसकी लेखिका है मधु काकरिया जी, जिन्होंने ये एक यात्रा वृत्तांत तैयार किया है। यात्रा वृत्तांत मैंने आपको जैसा कि पिछले ऑडियोज में भी बताया है कि वो यात्रा की एक कहानी होती है कि यात्रा पर आपको कैसे अनुभव हुए, आपने क्या क्या चीजें देखी, उसकी पूरी कहानी को जब आप शब्दों में बांधकर कागज पर उतार देते हैं तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो मधु काकरिया जी कहाँ की यात्रा पर निकली हुई है, वो सिक्किम से हिमालय की तरफ जा रही हैं। तो ये पहाड़ी रास्ते की जो सुंदरता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका वर्णन उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने ये वर्णन भी किया है इसमें कि वहाँ के जो लोग हैं कितने मेहनती हैं और कितने अभाव में, कितनी कमी में वो जीवन बिता रहे हैं। वो जब देखती हैं रास्ते में पत्थर तोड़ती महिलाओं को, तो उन्हें क्या लगता है कि जिस रास्ते से हम इतनी खुशी खुशी आनंद पूर्वक अपने यात्रा को इंजॉय करते हुए निकल जाते हैं, उस पे किसी ने कितनी मेहनत की होती है, अपनी जान की बाजी लगाकर ये महिलाएं इस रास्ते को चौड़ा कर रही होती हैं। ऐसी सारी चीजों का वर्णन करते हुए उन्होंने ये दिखाया है कि जहां खूबसूरती है, जहां सुंदरता है, वहीं पर दर्द या पीड़ा भी होती है। तो ये सुंदरता और दर्द का बहुत ही सुंदर मिश्रण इस पाठ में हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि घूमते घूमते कई सारे अच्छे अच्छे नजारे देखते हुए ये जो लेखिका और उनके सहयात्री हैं, ये एक जगह पहुंच जाते हैं। वहां पे ये रात में रुकते हैं लायुंग में, ठीक है। इन्हें यूमथोंग जाना है लेकिन वहां पहुंचने से पहले रात हो जाती है तो ये लायुंग में रुक जाते हैं। तो लायुंग में जब सुबह लेखिका उठती हैं तो उन्हें बर्फ देखने की इच्छा होती है, क्योंकि हम मैदानी लोगों को अक्सर पहाड़ पे जाते ही सबसे पहली जिज्ञासा यही होती है कि बर्फ कहाँ मिलेगी, कैसे देखने को मिलेगी। बर्फ जरूर देखनी होती, बर्फ नहीं देखा तो मतलब कुछ नहीं देखा। तो ऐसे ही लेखिका भी बेचैन हो रही है, तभी वहां कोई बताता है कि आप आगे चले जाइए कटाव पर, तो वहां पर आपको बर्फ जरूर मिलेगी, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि वो कटाव के लिए किस तरह से निकलते हैं। पेज नंबर 25 की लास्ट 2 लाइनों से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, ठीक है। तो उन्हें बहुत उम्मीद थी कि कटाव में अब बर्फ मिलेगी, बहुत एक अलग से उत्साह के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहां का रास्ता और भी खतरनाक है, और भी ऊंचा और पतला होता जा रहा है, साथ में बादलों की धुंध है, बारिश हो रही है। तो जितेन जो उनका ड्राइवर है वो लगभग लगभग अंदाजे से गाड़ी चलाता हुआ आगे बढ़ रहा है। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत चली। तो अब वो बता रही हैं क्योंकि रास्ते खतरनाक हो गए हैं और हर जगह पहाड़, पेड़, जो भी कुछ भी सामने दिख रहा है, हर जगह बस बादल बादल धुंध है, और इन्हीं बादलों के बीच में से उनकी जीप निकल रही है। अब रास्ते जो कि बहुत खतरनाक हैं, तो कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में एक डर होता है। तो सब लोग जो बैठे हैं, लेखिका और उनके सहयात्री, अब वो एकदम मौन है, यानी एकदम चुपचाप बैठ के जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब क्या देख रहे हैं, अपनी जीप को देख रहे हैं, रास्ते को देख रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से वहां फिसलन बढ़ गई है, पतले रास्ते हैं, तो बस वही देख रहे हैं और सब एकदम चुप बैठे हैं। वो कहती हैं अगर ये जो हमारी सांस लेने की आवाजें ना आए तो पता ही नहीं चल रहा कुछ जीवन है, सब कुछ शून्य है वहां, सब कुछ मौन, सब कुछ शांत, बस ये जो हमारी आवाजें हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, तो पता चल रहा है कि हाँ कोई जीवित व्यक्ति है। तो आगे बढ़ते बढ़ते फिर उनको दो चेतावनियां दिखती हैं, जैसे ऐसी जगहों पे अक्सर देखिए ना आप में साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, बोर्ड पे लिखा होता है कुछ ना कुछ, जैसे बोर्ड तो रोड पे हर जगह होते हैं कि दाएं मुड़े बाएं मुड़े, ये रास्ता इधर की ओर जाता है, ये इतने किलोमीटर दूर है, स्पीड धीमी रखें, आगे पुलिया है, ये ऐसे ऐसे आपने देखे होंगे। तो वही वहां पे क्या लिखा होता है, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड से यानी तेज गति को तलाक दे दीजिए। क्यों? क्योंकि घर पे आपके जो पति या पत्नी है वो इंतजार कर रहे होंगे। दूसरी चेतावनी, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। ये तो आपने अक्सर पढ़ी भी होगी कि दुर्घटना हो उससे अच्छा है कि आपको देर हो जाए, आप मतलब धीरे चल लें, इतनी तेजी में ना भागें, सावधानी से चलेंगे तो मौत को टाल सकते हैं। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नारगे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, मेरी सहेली मैनी स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, आधा रास्ता जब उनका पार हो जाता है तो ये बादलों की धुंध छटने लगती है, रास्ता थोड़ा ठीक होने लगता है, तो उनके पीछे जो सन्नाटा फैल गया था, जो चुप्पी हो गई थी ना, सब शांत हो गए थे, वो हटती है, लोगों में थोड़ी हिम्मत आती है, फिर बातें करने लगते हैं आपस में। तो नारगे उत्साहित होके खुशी होके क्या कहता है, क्योंकि जो गाइड होते हैं ना उन्हें हमेशा लगता है कि जो लोग घूमने आए हैं उन्हें अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए, तो वो खुश होकर क्या बताता है कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, यानी कटाव इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग कहते हैं कि वो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। अब क्योंकि जो लेखिका की सहेली और उनकी सहयात्री थी मणि, वो स्विट्जरलैंड घूम कर आई थी, तो उन्होंने प्रतिवाद किया यानी बात को नहीं माना। वो क्या कहती है, नहीं स्विट्जरलैंड इतनी ऊंचाई पर भी नहीं है और इतना सुंदर भी नहीं है, यानी कि हमारे देश का जो एक छोटा सा हिल स्टेशन है कटाव, वो इतना सुंदर है कि स्विट्जरलैंड पूरा का पूरा देश भी उसके सामने कम पड़ जाए। स्विट्जरलैंड इतनी ऊंचाई पर भी नहीं हो सकता और इतना सुंदर भी नहीं है, यानी कटाव ज्यादा खूबसूरत है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे, लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नारगे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो कटाव के पास पहुंचते जा रहे थे तो उनको पहाड़ दिखने लगे थे दूर से जिन पे बर्फ गिरी थी, और आधे हरे काले। क्यों? जहां पे पेड़ पौधे थे वहां पे हरे थे, जहां पे मिट्टी थी वहां काले काले दिख रहे थे, और जहां बर्फ गिरी थी वहां सफेद। तो लेखिका उसे कैसे वर्णन कर रही है उसका, कि ऐसा लग रहा है जो बर्फ है मतलब किसी ने पहाड़ों पर पाउडर डाला है, और जहां पाउडर छूट गया है वहां काले दिख रहे हैं, या वहां पे से धूप में वो पाउडर बह गया होगा, हट गया होगा। और नारगे फिर से उत्तेजित होकर उत्साहित होकर क्या कह देता है कि देखिए बर्फ एकदम ताजा है, लगता है कि रात में ही गिरी है, कितनी सुंदर लग रही है। अब लेखिका जो होती है ना वो बता रही है कि इतनी बर्फ थी, ऐसा जैसे हम साबुन से नहाते तो झाग हो जाते हैं ना सफेद सफेद, आप लोगों ने भी देखे होंगे, वैसे ही झाग हर तरफ दिखाई दे रही, यानी हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखा रही। अब लेखिका के अंदर का जो बच्चा है वो फिर से जाग जाता है और लेखिका खिड़की से मुंह निकाल निकाल कर यहां वहां फिर देख रही है। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ जो है वो चांदी की तरह चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनपे बर्फ गिरी हुई थी। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहां से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा, और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। क्या हुआ? जितेन जो उनका ड्राइवर है वो पूछता है उनसे, यहां आके आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? तो जवाब क्या देती है लेखिका, राम रोचो। ठीक है, लेखिका जवाब देती है राम रोचो, यानी बहुत अच्छा। अब क्योंकि नेपाली भाषा में उन्होंने बोला तो जितेन उछल पड़ता है खुशी से, होता है ना हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अगर कोई हमारी बोली बोलता है
जबकि वो किसी और बोली को बोलने वाला है, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो ऐसे जितेन भी खुश हो जाता है, अरे आपने ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी, आपने मेरी बोली कैसे सीखी। और अपनी भाषा का जो गर्व था कि अरे इन्हें मेरी भाषा, ये उसकी आंखों में उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। और तभी क्या हुआ, किसी चमत्कार की तरह, किसी जादू की तरह एकदम महीन महीन बारीक बर्फ आसमान से फिर गिरने लगी, जैसे कोई मोतियों की बारिश कर रहा हो, मोती बरस रहे हो आसमान से। तिम्रो माया सेंधे मलाई सताऊंच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहुं ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। अब क्या हुआ, ये जो बर्फ थी, जो सुंदरता थी प्रकृति की, वो जितेन ने कई बार देखी थी, लेकिन फिर भी उसके मन में फिर से एक थपकी लग रही थी। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार से सहलाती, वैसे ही प्रकृति उसको वो प्यार दे रही थी। तो इस प्यार में अब क्या हुआ, वो इतना डूब गया था जैसे झील में कोई तैर रहा हो, ऐसे प्यार में झूम के वो गाना गा रहा था, तिम्रो माया सेंधे मलाई सताऊंच, यानी तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक ओर हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। अब वो सारे लोग क्या हुआ, उस बर्फ को बहुत मजा ले रहे हैं, बर्फ में जीप से बच्चों की तरह कूद उतर के उस पर कूद रहे हैं, कोई लेट लेट कर फोटो खिंचवा रहा है, घुटनों तक बर्फ आ रही है, यहाँ वहां मस्ती कर रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं, ताकि इन यादों को हमेशा के लिए अपने जहन में वो कैद कर सकें। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 27 पे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, अब क्या हुआ, लेखिका कह रही है उनकी भी इच्छा हुई कि इस बर्फ पे कूदें, मजे करें, लेटें, लेकिन और क्या हुआ, मन वृंदावन। वृंदावन यानी क्यों, क्योंकि वो कृष्ण जी का धाम है, तो ऐसा लग रहा था कि मन में हमारे कोई देवता जाग गए हैं। उनकी भी ख्वाहिश हो रही थी कि जो जन्नत इस स्वर्ग में वो आ गई है, इस बर्फ पे लेटें, घूमें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि बर्फ पर चलने के लिए अलग जूते चाहिए होते हैं, लंबे लंबे जूते जो लगभग घुटनों तक आते हैं, वो लेखिका के पास नहीं थे। लेखिका ने सोचा कि किराए पर ले लूं, लेकिन कटाव, युमथांग और झांगू लेक की तरह कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। टूरिस्ट स्पॉट यानी कि भ्रमण स्थल, यानी जहां लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, ऐसी कोई जगह वो नहीं थी। और इस कारण यहाँ पे झांगू में दुनिया भर की दुकानें थी, लेकिन यहाँ पे एक भी दुकान नहीं थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। धनाधन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सिखना का महामंत्र पाया होगा, अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। अब वो क्या कह रही है, लोग दनादन यानी लगातार फोटो खिंचवाने पे लगे थे, ऐसे फोटो खींच लो, ऐसे फोटो, अलग अलग पोज बनवा के, अलग अलग तरीके से, बस फोटो फोटो फोटो। हमारे साथ भी होता है ना, किसी अच्छी जगह जाते हैं तो सोचते हैं यहाँ पे एक फोटो तो होना ही, चलो चलो जल्दी से फोटो खींच लो, फोटो का ख्याल आजकल सबसे पहले आता है। तो वहां पे भी लेखिका बता रही है कि सब दनादन यानी लगातार फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन लेखिका ने ऐसा करने के बजाय क्या चाहा कि ये जो सारा परिदृश्य, जो सारा माहौल है, दृश्य बन रहे, सारे नजारे हैं, उनको वो अपने अंदर खींच ले, यानी अपने अंदर कैद कर ले, ताकि जब वो महानगर में, शहरों में, अपने इस छोटे से कमरे में वापस जाएं, तो इसी दृश्य को, इसी नजारे को बार बार देख सके, महसूस कर सके। उनको ऐसा भी लग रहा था कि ये जो माहौल है, जो दिव्यता यहाँ पे प्रतीत हो रही है, ऐसे ही माहौल में जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने वेदों की, पुराणों की, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ शास्त्र हैं उनकी रचना की होगी। और सर्वे भवंतु सुखना, यानी सभी सुखी रहें, ऐसे महामंत्रों को लिखा होगा। फिर वो कहती हैं, कोई कितना बड़ा अपराधी हो या जिसने गलती कर रखी हो, बुरा आदमी हो, वो भी अगर यहाँ आएगा तो भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन करुणा के अवतार यानी दया के अवतार जैसे बुद्ध भगवान है वैसा थोड़ी देर के लिए तो बन ही जाएगा। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? ऐसे दृश्य को देखते हुए ना हमें अक्सर अचानक कुछ ना कुछ याद आ जाता है। वैसे ही लेखिका को क्या याद आता है, उनके दिमाग में एक सवाल आता है। उन्होंने एक कविता पढ़ी थी मिल्टन की, ठीक है, मिल्टन की एक कविता पढ़ी थी जिसमें उन्होंने ईव, जो एडम और ईव थे, उसमें जो ईव होती हैं उनकी सुंदरता का वर्णन किया है कि वो कितनी खूबसूरत हैं, कितनी मासूम, कितनी प्यारी और भोली सी हैं। ये वर्णन करते हुए उन्होंने ये लिखा कि वो सुंदरता ऐसी थी कि कोई शैतान भी उसे देख ले तो ठगा सा रह जाए, ऐसा रह जाए जैसे कुछ किसी ने ठग लिया, कुछ लूट लिया उसका, एकदम मंत्रमुग्ध होके उसको देखे। और दूसरों का अमंगल यानी दूसरों का बुरा करने की जो आदत होती है शैतान की, वो भी वो भूल जाता है और केवल उस सुंदरता में ही खो जाता है। ये सोचते हुए लेखिका मणि, जो उनकी सहेली, उससे पूछती हैं, क्या तुमने मिल्टन की वो कविता पढ़ी? लेकिन मणि जो है वो कुछ और सोच में है। देखिए आगे पढ़ते हैं। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, यह हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। वो मणि से कविता के बारे में पूछ रही है, लेकिन क्योंकि उस समय हर किसी के मन में कुछ ना कुछ अलग चल रहा था तो वैसे ही मणि भी कुछ और सोच रही थी, उसके दिमाग में कुछ और ख्याल आ रहे थे। तो उसके मुंह से अचानक क्या निकलता है, दार्शनिकों की तरह यानी जो फिलोसोफर होते हैं ना उनकी तरह वो कुछ बोलती है। क्या कहती है कि ये जल स्तंभ है, है ना, यानी पिलर्स हैं जो जल को इकट्ठा करके रखते हैं, पूरे एशिया के जल स्तंभ, यानी पूरा एशिया जल के लिए इन हिमालयों पर ही निर्भर करता है। फिर वो कहती है प्रकृति ने कितने नायाब, कितने अनोखे ढंग से, कितने अद्भुत तरीके से ये इंतजाम कर रखा है कि इंसान की रक्षा कैसे की जाए, है ना। जैसे सर्दियां आती हैं तो बर्फ के रूप में वो पानी को संग्रह करती है यानी इकट्ठा करती हैं, लेकिन गर्मी में जब सबको पानी की जरूरत होती है, तड़प मचती है पानी की, तो ये बर्फ पिघलती हैं और जल धाराओं के रूप में, नदियों के रूप में हमें पानी बनके इनसे मिलता है, हमारे सूखे कंठों को यानी जो हमारे सूखे गले होते हैं उनको तरावट मिलती है, उनको नमी मिलती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, यानी कि जल को इकट्ठा करने की, जल को संभाल के रखने की, क्या व्यवस्था की है इस पूरी प्रकृति ने। मणि ने अभी भी तो माथा नवाया, जाने कितने ऋण हैं हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई, उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आया। अम्मणी जो है वो फिर से कहती है कि ये जो नदियां हैं, जो हिमशिखर हैं, जो पहाड़ हैं हिमालय बर्फ के, ये हम पर कितना इनका उधार है, इतना कुछ हमें दे चुके हैं लेकिन हम इन्हें क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं, हम तो इनके सामने बहुत छोटे हैं। ये संसार, ये दुनिया कितनी सुंदर है। और ऐसे ही ये सपने से जो मणि देख रही थी, वैसे ही सपने में लेखिका भी खोई थी, और इससे जागते हुए अचानक से फिर लेखिका को एक उदासी घेरती है। क्यों? क्योंकि जो सुंदरता है प्रकृति, ये सब हटती है उनके सामने से, उनके सामने वो दृश्य आ जाता है जब उन्होंने पहाड़ियों को देखा था, पहाड़ी महिलाओं को, कि वो पत्थर काट रही हैं, रास्ता बना रही हैं ताकि बाकी लोग, बाकी यात्री अच्छे से इस जगह में घूम सकें। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया, यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। ठीक है, अब क्या हुआ, आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ, यानी अंदर से बहुत से सवाल, बहुत से विचार आते रहे थे, और उन सब से पार होते हुए वो और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और रास्ते पे जाते हैं, तो उन्हें क्या दिखता है, छावनियां दिखने लगती हैं, यानी टेंट्स, ये जो फौजी कैंप्स जो होते हैं ना, वो दिखने लगते हैं। तो उन्हें, लेखिका को याद आता है कि हाँ, अब बॉर्डर एरिया स्टार्ट हो चुका है, चीन की सीमा है थोड़ी देर बाद। तो तभी वो कुछ फौजी लोगों के पास जाती है, उनसे बातें करती है, और एक फौजी से क्या पूछती है कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में, इतने ठंडे मौसम में, क्योंकि उस समय वहां का तापमान कितना बता रही है वो, -15 डिग्री सेल्सियस, और बर्फ कब जमती है, 0 डिग्री पे, है ना। तो सोचिए, बर्फ का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री पे, उससे भी 15 डिग्री और कम जा रहा है, तो सोचिए कितनी ठंड होगी, है ना। तो वो पूछती है, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, इतने ठंडे मौसम में, कि आपको तकलीफ, कोई मुश्किल, दिक्कत नहीं होती। पेज नंबर 28 पर आइए आप। वह हंस दिया, एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सके, इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटुला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखी एक फौजी छावनी, जिस पर लिखा था, वी गिव यू टुडे फॉर योर टुमारो। जब उन्होंने इस फौजी से पूछा कि आपको यहाँ तकलीफ नहीं होती, तो वो एक अलग सी, एक थोड़ी सी उदासी भरी हुई हंसी हंसता है, और क्या कहता है, नहीं, क्योंकि आपको चैन की नींद मिल सके, इसीलिए हम यहाँ पे हमेशा पहरा देते रहते हैं, यानी अपने देश की रक्षा करते रहते हैं। फेरी बेटुला नेपाली में एक शब्द है, जिसका मतलब होता है फिर मिलेंगे। यह कहते हुए जितेन जीप को चालू कर देता है, यानी गाड़ी लेके वो लोग आगे चल जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद, जब आगे एक रस्ते पे उन्हें फिर फौजी छावनी, यानी फौजी कैंप दिखते हैं, जहां पे फिर कुछ लिखा होता है। क्या लिखा है, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, यानी हम अपना आज समर्पित कर देते हैं आपके कल के लिए। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल, अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। अब जब ये सब वो देखती हैं, तो उनको मन में फिर से एक उदासी छाने लगती है, कुछ पिघलने सा लगता है ना, कुछ अजीब सा लगता है अंदर। उन्हें क्या लगता है कि हम महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें कभी ये ध्यान ही नहीं जाता कि जो बर्फीले इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां में वैसाख के महीने, वैसाख का महीना कब होता है, अप्रैल और मई के आसपास, ठीक है। इस महीने में भी जब हम इतना, क्योंकि आपको पता है मैदानी इलाकों में इन महीनों में बिल्कुल ठंड नहीं रहती है, और बर्फीले इलाकों में जाके इस महीने में भी जब हम ठंड से ठिकुरते हैं, तो जो जवान है, जो हमारे फौजी हैं, ये पौष और माघ में, यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीने में, इन्हें कितनी ठंड लगती होगी, कैसे रहते होंगे, क्योंकि उन महीनों में यहाँ पर पेट्रोल के सिवा सब कुछ जम जाता है, इतनी ज्यादा ठंड होती है कि हर चीज जम जाती है, तो ये अपना जीवन कैसे बिताते होंगे। और यहाँ के जो रास्ते हैं, इतने घुमावदार, इतने घूमे हुए हैं, इतने पतले हैं, इतने खतरे से भरे हुए हैं, कि सिर्फ वहां से थोड़ी देर के निकलने के लिए हमारे प्राण कांप उठते हैं, हम डर जाते हैं, अपनी जान की फिक्र होने लगती है। उन्हीं रास्तों को बनाने में कितने लोगों ने अपने जीवन की आहुति दे दी है, अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है। वो कहती हैं कि मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही खोज यात्रा थी, यानी कि एक ऐसी यात्रा थी जिसपे काफी कुछ खोजा, काफी कुछ सोचने को मिला, समझने को मिला, कुछ नई चीजें सामने आई, है ना। अब वो क्या हुआ, लायुंग की तरफ वापस जा रहे हैं, ताकि वो युमथांग चले जाएं, क्योंकि वो लायुंग से कटाव आ गए थे बर्फ देखने के लिए, अब उन्हें वापस लायुंग जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो मुख्य उद्देश्य था जाने का, वो कहां था, युमथांग। अब वो जितेन के बारे में क्या बताती है, कि जितेन जो है
वो कुछ दिन पहले ही नेपाल से यहाँ पे ताजा ताजा आया है, यानी उसको यहाँ आए हुए बस थोड़े ही दिन हुए हैं। युमथोंग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियोता और रूडोडेंड्रों के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। अब जब वो युमथोंग की घाटियों में की गुजरती हैं, तो वहां उन्हें एक और चीज दिखती है, प्रियुता और रूडोडेंड्रो के सुंदर सुंदर फूल। जितेन बताता है कि 15 दिनों में इतने फूल यहाँ उग जाएंगे, इतने फूल हो जाएंगे कि पूरी घाटी फूलों से ऐसे भर जाएगी कि आपको लगेगा किसी ने फूलों की सेज यानी कि फूलों का बिस्तर सजा के रखा है। और वो बताती हैं आके रास्ते क्योंकि थोड़े चौड़े थे, कटाव जितने पतले नहीं थे, तो अब खतरों का एहसास कम था और थोड़ा सुकून ज्यादा था, लोग निश्चिंत होके जा पा रहे थे। वहां पे उन्हें कई बंदर कई जानवर दिखे जो अकेले थे, अपने बच्चों के साथ थे, मतलब प्रकृति की सारी चीजें, पशु पक्षी पेड़ फूल सब कुछ दिख रहे थे। बहरहाल घाटियों वादियों पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीभ जब युमथोंग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथोंग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। अब क्या हुआ, घाटियों में वादियों में बादलों की आंख में चौली चल रही है, क्यों? क्योंकि बादल कभी आते हैं कभी छुप जाते हैं। और पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप, जब उनकी जीप जो है वो युमथोंग पहुंचती है तो उनको थोड़ी सी उदासी एक निराशा होती, क्यों? क्योंकि कटाव में वो इतनी सुंदरता दिखाए थे, बर्फ से ढके इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखाए थे कि अब युमथोंग उन्हें थोड़ा सा फीका लग रहा था। युमथोंग इतना सुंदर नहीं लग रहा था जितना कटाव लगा था, तो उन्हें ये लगा। और लेकिन उनकी मंजिल क्या थी, युमथोंग, उन्हें आना तो युमथोंग ही था ना, बीच में वो तो क्योंकि किसी ने बता दिया तो कटाव घूमते हुए आ गए, लेकिन मुख्य उनकी जो मंजिल थी वो थी युमथोंग। तो वही वो बताती है कि ये यहाँ आने के बाद ऐसा एहसास हुआ, ये पता चला कि मंजिल से ज्यादा रोमांचक, मंजिल से ज्यादा अच्छी, ज्यादा खूबसूरत होता है मंजिल का सफर, यानी जो रास्ता हम तय करते हैं वो ज्यादा खूबसूरत होता है बजाय उस मंजिल के। बहरहाल युमथोंग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूं, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा, सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। मैं हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस तरह घुल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था, है ना। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। अब वो बताती है कि वहां पे उन्होंने एक महिला को देखा जो कि चिप्स बेच रही थी, है ना, छोटी छोटी चीजों की उसकी दुकान थी। तो उससे लेखिका ऐसे सहज रूप से पूछ लेती है, क्या तुम सिक्किमी हो, यानी क्या तुम सिक्किम की रहने वाली हो? तो जो युवती है वो क्या जवाब देती है, नहीं मैं इंडियन हूं, यानी मैं क्या हूं, मैं तो भारतीय हूं। और ये सुनकर फिर लेखिका को बहुत अच्छा लगता है, वो बताती है कि सिक्किम के जो लोग हैं वो भारत में मिलकर बहुत खुश हैं, क्योंकि पहले जो सिक्किम था ना वो भारत में नहीं था, एक अलग राज्य था, और तब वहां का जो ये टूरिस्ट उद्योग था इतना नहीं फला फूला था, यानी वहां लोग इतना नहीं घूमने जाते थे वहां, इसलिए लोगों की कमाई भी इतनी नहीं होती थी। अब हर एक सिक्किमी यानी सिक्किम का रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारत की जो आबो हवा है भारत में मिलकर बहुत खुश है, उन्हें उनकी खुशी देख के और उनका ये मिलाप देखकर ये लगता ही नहीं है कि सिक्किम के पहले कभी अलग राज्य था और भारत में नहीं था, लेकिन अब भारत में मिलकर हम भी बहुत खुश हैं और वो लोग भी बहुत खुश हैं। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। जैसे ही अब वो जीप में बैठने वाले होते हैं तो कुछ और जीप दिखाई देते हैं, पहाड़ी कुत्ते। पहाड़ी कुत्तों के अक्सर साइज थोड़ा बड़ा होता है, आकार में हमारे मैदानी कुत्तों से बड़े होते हैं और थोड़े बाल भी ज्यादा होते हैं। अब मणि बताती है ये पहाड़ी कुत्ते हैं, काफी शांत रहते हैं, भौंकते नहीं है। कब भौंकते हैं? चांदनी रात में, यानी जब अंधेरा हो चांद पूरा हो तभी ये भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जागती है? खैर अब
लेखिका कहती है, मुझे आश्चर्य हुआ सुन के, क्या मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कुत्तों को भी पता है। जैसे होता है ना चांद जब होता है पूरा पूर्णिमा वाली रात समुद्र में ज्वार भाटा आती, लहरें ऊपर नीचे होती हैं, वैसे ही क्या कुत्तों पर भी उसका असर पड़ता है। खैर आगे की बात करते हैं। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम यहाँ एक पत्थर है जिसपे गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं या गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। अब रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं और जितेन अपनी आदत के अनुसार, क्योंकि वो गाइड भी है उनका, रकम रकम यानी तरह तरह की जानकारी देता रहता है। क्या बताता है? मैडम यहाँ पे एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक जी के फुटप्रिंट यानी कि पैरों के चरणों के निशान हैं। और ऐसा कहते हैं एक बार यहाँ पे थाली में वो खा रहे थे तो थोड़े से चावल बाहर गिर गए और उसी जगह पे आज चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम इसे खेदुम कहते हैं। यहाँ पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। अब क्या होता है, जैसे 3-4 किलोमीटर और रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो फिर एक जगह को उंगली दिखाता है जितेन और क्या कहता है, इसे खेदुम कहते हैं। ये जो जगह है खेदुम कहते हैं और ये लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है और यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि देवी देवताओं का निवास है, जो देवी देवता हमारे पूज्य हैं वो यहाँ रहते हैं, इसलिए यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़ नदी झरने हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इंदस इतना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। अब क्या हुआ, जब उसने ऐसा कहा तो लेखिका ने उससे पूछा कि तुम यहाँ गंदगी नहीं फैलाते? तो कहता है नहीं नहीं, जो पहाड़ है नदियां हैं जन यानी जो प्रकृति की चीजें हैं हम इनकी पूजा करते हैं, तो अगर हम गंदगी करेंगे यहाँ पे तो हम मर जाएंगे। तो लेखिका को एहसास होता है कि ये जो प्रकृति की इतनी कद्र है यहाँ पे, इसी वजह से गैंगटॉक इतना सुंदर है। तो वो क्या बोलता है, आप इसे गैंगटॉक नहीं गंतोक कहिए, क्योंकि इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम यूमथोंग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, मन ही मन में कहती हूँ। जीप आगे बढ़ने लगती है। अब क्या हुआ, क्योंकि जितेन की आदत है काफी बोलने की, तो फिर बताता है वो कि जो कटाव जैसे अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया, वैसे यूमथोंग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यानी लोगों की घूमने की जगह नहीं था, लेकिन जब सिक्किम राज्य को भारत में मिला लिया गया तो हमारी जो भारतीय आर्मी इंडियन आर्मी के कैप्टन थे कप्तान उस समय शेखर दत्ता जी, उन्होंने क्या कहा कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, अगर सही से रास्ते बना दिए जाएं तो ये टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, लोगों को यहाँ की सुंदरता देखने का मौका मिल सकता है। इसीलिए आप देख सकती हैं कि कुछ रास्ते जो हैं वो अभी भी बन रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहा है। तो लेखिका बताती है कि हाँ रास्ते अभी भी बन रहे हैं और नए नए स्थानों की नए जगहों की खोज है, लोग ढूंढ रहे हैं, अभी भी जारी है। इसी खोज को, ये जो इंसान की प्रवृत्ति है कुछ नया खोज लेने की, इसी की वजह से ये इतना सुंदर लगता है, इस चीज का नाम ही सुंदर है। मन ही मन वो ऐसे कहती जाती है, उनकी जीभ जो है वो आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरे पाठ में ये देखा कि रास्ते जहां इतने सुंदर हैं, जो जगहें इतनी सुंदर हैं, साथ में ही उनके साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें एक पीड़ा का अनुभव होता है ना, एक यानी सौंदर्य और दुख और दर्द, उदासी का मिश्रण। लेकिन बहुत ही खूबसूरत यात्रा रही, मुझे उम्मीद है मेरी तरह आपको भी लगा होगा कि हम भी यूमथोंग से होकर आए हैं, है ना, आंखों के सामने सारे नजारे आ गए थे। तो यहाँ आपका पाठ जो पूरा होता है, प्रश्न उत्तर हम करेंगे अगले ऑडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।